الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. رب زدنا علما، اللهم فقهنا في الدين، اللهم إنا نسألك علما نافعا وعملا متقبلا ورزقا طيبا. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. آمين يا رب العالمين. هجم إن شاء الله تعالى سورة النجم آيات نمبر 31 سے 62 تک کریں گے، اور اس طرح سے اس سورة کو ان شاء الله آج مکمل کریں گے. دیکھتے ہیں تفسیر. وَلِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ، یہاں پر اللہ تعالیٰ نے اپنی ملکیت کا ذکر فرمایا کہ ملکیت اس کی کیسی ہے، اس کی ملکیت کن چیزوں پر ہے. اس سے پہلے ہم نے ایک روایت دیکھی بخاری میں، جو ایک روایت ہے امام زہری کا قول ہے، اور جس کے اندر ہم نے یہ دیکھا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر جب وحی کی بندش ہو گئی تھی تو اس قدر غم لاحق ہو گیا تھا کہ بعض دفعہ خود کو پہاڑ سے گرانے کی کوشش کی. تو دیکھنے کی یہ ضرورت ہے کہ کیا یہ قصہ ثابت ہے. تو بخاری میں موجود تو ہے، مگر امام زہری کا قول ہے، اور وہ کہتے ہیں کہ ہم تک یہ بات پہنچی، بلاغنا، ایسے انہوں نے فرمایا کہ ہم تک یہ بات پہنچی. تو یہ روایت مرسل ہے، کسی نے ان کو بتائی، کس نے بتائی تو یہ نہیں پتا چلتا. لہٰذا اگر ہم اس روایت کو لیتے بھی ہیں تو پھر بھی ہم یہی کہہ سکتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت قلق یا بہت غم لاحق ہوا تھا، اور اس کی وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پریشان تھے. یہ بھی یاد رکھیں کہ بخاری میں جو امام زہری سے بلاغن روایت کیا گیا ہے وہ بخاری کی شرط پہ نہیں ہوتا، ٹھیک ہے؟ تو یہ ہم نے پہلے پڑھا ہے. اب آج جو ہم پڑھنے جا رہے ہیں اس کے اندر کچھ چیزیں، جیسے اللہ تعالیٰ کی وحدانیت پہ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کے اوپر، اسی طرح ہم کس کردار کے حامل ہوں تو اللہ تعالیٰ کے نزدیک ہم پسندیدہ ہوں گے، اس پہ بات کی گئی ہے، اور آخرت کے اوپر بات ہے، اس قرآن کے ساتھ رویے پہ بات ہے. تو جب ہم پہلی آیت دیکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے لیے ہی ہے جو بھی آسمانوں میں اور جو بھی زمین میں. آسمانوں میں کیا کچھ ہے انسان اب تک نے نہیں جان سکا، اگر ہاں یہ یقین ہونا چاہیے کہ جو کچھ بھی آسمانوں میں، چاہے وہ کتنے ستارے، سیارے، بلینز، ٹریلینز ہیں، یا کتنی دور ہیں اور کتنے ہی بڑے ہیں، ان کی ملکیت جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کے پاس ہے. اللہ تعالیٰ نے ان کو بنا کے بھی چھوڑ نہیں دیا، بلکہ ان کے اندر ہر قسم کا اختیار، ہر قسم کی اس کے اندر تصرف اللہ تعالیٰ کر سکتا ہے، اسی کا حکم چلتا ہے، وہی چلا رہا ہے ان کو، اسی کے دم سے یہ کائنات اپنی جگہ پر قائم ہے. وہ کائنات کتنی بڑی ہے، اس سماوات جب ہم کہتے ہیں تو اس میں پوری کائنات آ گئی، اور کتنی بڑی ہے کہ انسان آج تک صرف جان بھی نہیں سکا، پہنچنا تو بہت دور کی بات ہے، صرف جان بھی نہیں سکا کہ کائنات کہاں تک پھیلی ہوئی. جس وقت آپ اس بات کو ذہن میں لاتے ہیں کہ جتنا کچھ بھی آسمانوں میں وہ سب اللہ کا ہے، उसका मालिक वही है और उसको पैदा उस सबको अल्लाह ताला ने किया है और इस उसी का इख्तियार उसमें चलता है। और जो कुछ जमीन में, क्या कुछ है जमीन में, इस जमीन में भी सारी चीजें अभी तक इंसान नहीं जान सका, रोज नई डिस्कवरीज होती हैं। तो जो कुछ जमीन में वो भी अल्लाह ताला का ही है। जब ये बात आप गौर करें, इस पे ये बात सोचें, तो फिर ये यकीन आने के बाद इंसान की जुबान बंद हो जाती है। उसको तब एहसास होता है कि अल्लाह ताला की जात कितनी अजीम है, कितनी बड़ी है। अपने इर्द गिर्द फैली हुई हर चीज को देखें, जो आपकी नजरों के सामने आए या जो आपके ख्याल में भी आ सकती है, और फिर सोचिए ये सब अल्लाह का है। चाहे मेरा जिस्म है, चाहे मेरी औलाद है, मेरा घर बार, ये दरख्त, ये पत्ते, ये जमीन, ये पानी, ये हवा, ये आसमान, ये सितारे, ये सूरज, ये चांद, जहां तक आपकी अकल जा सकती हो, आप सोचिए ये सब अल्लाह का है। इंसान कहता है मेरा है। इंसान की मिल्कियत तो बहुत टेम्प्ररी है और पार्शियल है, कंप्लीट है ही नहीं। मतलब आप कहते हैं ये घर मेरा है, ये घर के पूरे मालिक आप नहीं हैं, इसलिए कि इसी घर पे आपको टैक्स भी देना पड़ता, यही घर की मेंटेनेंस आपको करनी पड़ती है, इस घर को आप संभाल के रखना चाहते हैं, लेकिन एक दिन आप दुनिया से चले जाते हैं और ये घर किसी और कुछ पास चला जाता है, तो ये कैसी मिल्कियत है, टोटल तो है ही नहीं। किसी दिन गवर्नमेंट ले लेती है किसी से। तो चाहे कोई भी चीज हो इस दुनिया में, हत्ता कि इंसान का अपना जिस्म ही है, इंसान कहता है ना मैं इस जिस्म का मालिक हूं, मैं मालिक, ये बहुत टेम्प्रेरी है और पार्शल है, यानी कंप्लीट नहीं है। कैसे आप कहते मैं मालिक हूं तो ये दिल चलता रहे, मैं मालिक हूं तो कोई बीमारी ना हो, मैं मालिक हूं तो बुढ़ापा ना आए, मैं मालिक हूं तो मेरे नाखून ज्यादा ना बढ़े, बाल ना बढ़े, बाल ना गिरने लगे, लेकिन कोई चीज भी हमारे कंट्रोल में नहीं। बीमारियां भी हमारे ऊपर आती हैं, बुढ़ापा भी हमारे पे आता है, दिल भी चलते चलते बंद हो जाता है, स्किन है तो वो ढलकने लगती है। तो क्या हम इसके वाकई मालिक हैं? खुद सोचिए, जिन जिन चीजों को भी इंसान कहता है मैं इसका मालिक हूं, वाकई हकीकी मिल्कियत नहीं है। हकीकी मिल्कियत सिर्फ और सिर्फ अल्लाह ताला के पास है। और वो मिल्कियत कैसी हुई, जो किसी ने आपको दे दिया थोड़ी देर के लिए और आपने समझ लिया कि मैं मालिक हो गया और वो ही वापस ले लेगा, तो फिर सोचें किस मिल्कियत का दावा करते हैं? अल्लाह ताला की जो मिल्कियत है उसने किसी से लिया नहीं और उसको किसी को लौटाना नहीं है, इसीलिए वो एब्सोल्यूट मालिक है, एब्सोल्यूट। तो जो चीजें भी इंसान अपनी समझता है वो उसकी नहीं है, वो भी अल्लाह ताला की ही है। तो फिर हर चीज का मालिक अल्लाह ताला है। और जब इंसान को ये यकीन आ जाए ना, तो फिर ही उसका दिल झुकता है अल्लाह ताला के आगे, फिर ही वो सरेंडर करता है अल्लाह ताला के आगे, फिर ही वो अल्लाह ताला के फैसलों को मान लेता है, इसलिए कि हर चीज उसकी है। देखिए ना, आप मसलन कहती हैं कि ये घर मेरा है, कल को कोई भी आके आपके घर में कहे कि ये चीज सही नहीं, वो चीज सही नहीं, तो आप आगे से क्या कहते हैं? आपको अच्छा लगता है? नहीं अच्छा लगता। कहते मेरा घर, मैं जो मर्जी करूं, तुम्हें इससे क्या? अल्लाह ताला की इस कायनात में वो जो मर्जी करे वो मालिक है ना। अपने घर पे कयास करके सोचें, आपको आप कहने लगे कोई, आप ये कपड़ा पहने ये नहीं पहने, आपको डिक्टेट कराने लगे तो आपको अच्छा नहीं लगेगा। आप कहते मेरी जिंदगी मैं जैसे भी गुजारूं, तुम मुझे क्यों कहते? अल्लाह ताला की इस कायनात में वो मालिक है और अकेला मालिक है, वो जो मर्जी फैसले करे। क्या फिर मुझे और आपको ये हक पहुंचता है कि हम आगे से ये कहें ये मुझे नहीं पसंद, ये फैसला क्यों हुआ? ऐसे क्यों किया गया? हमें अक्सर एतराजात इसी पे तो होते, मेरे साथ ये क्यों हुआ, ये तो नहीं होना चाहिए था, फलां के साथ ऐसा क्यों हुआ। और फिर हम अल्लाह ताला से बदगुमान होने लगते, इसलिए कि हमें यकीन नहीं है ना कि जो कुछ आसमानों में है और जमीन में है, ये पढ़ लेना तो आसान है, इसका यकीन रखना दिल में, सब कुछ अल्लाह का है, मेरा कुछ नहीं है। जैसे किसी ने किसी से पूछा, ये घर आपका है? तो उसने कहा नहीं, अल्लाह का है। तो इस यकीन को दिल में बिठाएं, इसको अपने आप को बार बार दोहराने की जरूरत है। हम बार बार अपने आप को कहते रहे ये अल्लाह का है, ये भी अल्लाह का है, ये जिंदगी अल्लाह की है, इसीलिए तो जब चाहे ले ले, अगर आपकी है तो फिर आप बचा लिया करें ना इस जिंदगी को, क्यों जाने देते हैं। तो इसको सोचें और इस पे यकीन करें, सब अल्लाह ताला का है। जब मुझे अपने छोटे से घर में, जो कि मेरी पूरी मिल्कियत नहीं है उसमें, तब भी मुझे पसंद नहीं आता कि कोई मुझे डिक्टेट कराए कि मैं क्या फैसला करूं अपने घर की डेकोरेशन के बारे में, अपने घर में चीज लाने के बारे में, मुझे अच्छा नहीं लगता। तो फिर मैं कैसे उठ के अल्लाह ताला के फैसलों के ऊपर एतराज करूं। इसी तरह शरीयत के जितने भी अहकामात हैं जिन पर अक्सर लोग उंगलियां उठाते हैं, ये स्पेयर नहीं, ये तो जालिमाना बातें हैं, अस्तग़फिरुल्लाह, ये तो ऐसे ही हैं, ये तो हुक्म नहीं होना चाहिए, ये तो सही नहीं है, और बहुत हमें एतराज होते हैं। वो भी इसलिए होते हैं कि हम शायद ये भूल जाते हैं, ये सारी कायनात अल्लाह ताला की है, जो चाहे हुक्म दे, जिसको चाहे मार दे, जिसको चाहे जिंदगी दे, जिसको चाहे बीमार कर दे, जिसको चाहे सेहत दे, जिसको चाहे शौहर दे दे, जिसको चाहे बगैर शौहर के रखे, जिसको चाहे औलाद दे, जिसको चाहे ना दे, जिसको चाहे रिस्क खोल दे, जिसको चाहे ना दे, तंग कर दे, हम कौन होते कहने वाले। औरत के लिए हिजाब का हुक्म दे दे, मर्द के लिए ना दे, हम कौन होते हैं बोलने वाले। मर्द के लिए जन्नत में हूरों का इंतजाम कर दे, औरत के लिए ना करे, हम, हमारा क्या मुंह इतना होता है कि हम बोले ये क्यों, ऐसे क्यों, ये क्यों होना नहीं चाहिए, ये तो ऐसे, ये तो सही नहीं लग रहा मुझे। कौन होते हैं हम बोलने वाले। ये सवालात आना इस बात की निशानी है कि हमें यकीन नहीं है कि आसमान और जमीन और जो कुछ में है, जो कुछ इसमें है, मा फिस समावात व मा फिल अर्द, वो अल्लाह ताला का ही। और मैंने जैसे आपको बताया, लिल्लाह जब पहले आ गया तो इसके अंदर ये बात है, जब ग्रामेटिकली ऐसे होता है, वरना होना था मा फिस समावाती व मा फिल अर्दी लिल्लाह, जो आसमान और जमीन में हो अल्लाह के लिए। लेकिन जब लिल्लाह पहले आ गया ना, तो इसका मतलब सिर्फ अल्लाह ही के लिए, कोई और भी नहीं है मालिक, किसी और का इख्तियार नहीं है। तो फिर इस सब इतराजात कैसे? तो पढ़ तो बहुत सारे लोग लेते हैं कुरान को, लेकिन उसके बाद ये यकीन भी होता है? नहीं होता, तभी तो इतराज आते हैं, तभी तो ऑब्जेक्शंस होती हैं, तभी तो उंगलियां उठती हैं, तभी तो कदम कदम पे हमें दिल में बेचैनी लग जाती है कि ये तो सही नहीं है। दिल ठुकता नहीं है, जमता नहीं है, इसलिए कि ये यकीन नहीं है, सब उसका है। इसलिए ही इंसान कहता है फलां दुनिया से क्यों चला गया, अभी तो नहीं जाना चाहिए था। क्यों? आपको किसने ये इख्तियार दिया कि आप फैसले करें किसको कब जाना है और किसको कब नहीं जाना? या और बातों में भी क्यों उसने ऐसा कर दिया, उसका इख्तियार है। क्यों मेरी जिंदगी में ऐसा हुआ? क्योंकि मेरी जिंदगी नहीं है, उसने दी भी है जो चाहे करे। तो एक बात का यकीन इंसान को किस कदर एट पीस कर देता है, इंसान पुरसकून हो जाता है, सब कुछ उसका है। और फिर इंसान का दिल झुकने लगता है। आप सोचिए, आपको पता चल जाए, वैसे इस तरह का नहीं होना चाहिए अकीदा, लेकिन वैसे ना आपको ये पता हो या आप ये समझते हो कि मेरा रिस्क फलां के हाथ में है, मेरी जॉब इसके हाथ में है, ये मुझे जॉब से ना निकाल दे, बस ये अगर खुश हुआ तो मेरी जॉब चलती रहेगी, इसको मैंने नाराज नहीं करना, फिर मेरी जॉब चली जाएगी। आप उसके सामने कितना बिचते होंगे, कितना उसको खुश करने की कोशिश करते होंगे, क्योंकि सिर्फ एक जॉब है जो आप ये समझते हैं कि ये इसके हाथ में, और उसकी वजह से आप उसके आगे बिच बिच जाते हैं। और कैन यू इमेजिन, जिसके हाथ में हर चीज है, सिर्फ जॉब नहीं, हर चीज, एक एक सांस उसके हाथ में, एक एक दिल की धड़कन उसके हाथ में, ये जिस्म, ये सेहत, ये बीनाई, ये सुनना, ये बोलना, ये मेरा चलना, ये मेरा फिरना, मेरे मैदे का हजम करना भी, और मेरा सारा निजाम जो मेरे अंदर चल रहा है वो सब, मेरा रुआ रुआ उसके कब्जे में है, मेरा रिस्क, मेरे बच्चे, मेरी खानदान, मेरा घर बार, अमनो आमान, जो कुछ भी है उसके हाथ में है। तब क्या ऐसा नहीं होगा कि इंसान बिछ जाएगा, झुक जाएगा, इंसान फिर सर नहीं उठा सकेगा। तो एक यकीन है जो दिल में लाने की जरूरत है, और उस यकीन के बाद सब चीज, सारा अकीदा सही हो जाता है, इंसान बिल्कुल तीर की तरह सीधा हो जाता है। फिर किसी को कहना नहीं पड़ता कि अपने बॉस को खुश रखो, फिर आप खुद आगे पीछे फिरते हैं, क्योंकि तो आपको पता है जी मेरी नौकरी का सवाल है, तो मेरी तो हर चीज का सवाल है अल्लाह ताला के पास, उसको तो मैंने खुश करना है। तब ये ख्याल आता है, तभी ये इंसान सोचता है कि मैंने एट एनी कॉस्ट उसको खुश रखना है, क्योंकि मेरा तो सब कुछ उसके हाथ में है, मेरी तो सर्वाइवल का सवाल है, मेरी तो हर चीज का सवाल है, मैं कैसे ना उसको खुश रखूं। फिर इंसान छोटी छोटी बातों पर दूसरों को खुश करने के लिए नहीं भागता, हर बात में वो कहता है मेरा अल्लाह ना नाराज हो जाए, भाई उसको नहीं नाराज कर सकता। फिर आप ये सवाल नहीं करते क्या करें, हस्बैंड नहीं मानते, क्या करें बच्चे नहीं मानते, क्या करें घर वाले ही नहीं मान रहे, फिर आपको ये होता है कि मेरी तो डोर उसके हाथ में है, मैं तो कुछ भी नहीं हूं, सब कुछ उसके हाथ में, उसको कैसे नाराज कर दूं, मेरे बच्चों के हाथ में नहीं कुछ, मेरे शौहर के हाथ में कुछ नहीं, लोगों के हाथ में कुछ नहीं है, लिल्ला, अल्लाह ही के पास है, उसी के लिए जो आसमानों में और जो जमीन में, मैं ही नहीं सब कुछ उसका ही है, उसी के पास है, उसी की मिल्कियत है, उसको कैसे नाराज कर दूं, ओनर तो वो है। इंसान फिर अफोर्ड ही नहीं कर सकता कि अल्लाह ताला को नाराज करके और आराम से बैठा रहे। फिर अब इतना ही आयत का टुकड़ा ही लेके ना, और आप बैठे रहे इसके ऊपर, बोलते रहे और सोचते रहे, तो वक्त खत्म हो जाएगा। इस एक आयत को डिफाइन नहीं किया जा सकता, इसमें इतनी वुसत है, लेकिन हम पूरा पूरा कुरान भी पढ़ लेते हैं, ये यकीन आ ही नहीं पाता, केवल अल्लाह ही माफ समावाती व माफ अल्अर्ध, इंसान के आंसू बहने लगते हैं, अल्लाह मैंने तो किस किस को मालिक समझ लिया था, असल मालिक तो तू ही है, मैं किस धोखे में थी, मैं किधर टकरे मार रही थी, मैं किस दर पे जाके किस किस से मांगती थी, किस किस से उम्मीदें लगाई हुई थी, किस किस के साथ आस रखी हुई थी, किस किस पे भरोसा किया हुआ था, मालिक तो तू है, जो चाहे कर दे। देखिए जो मालिक होता है ना वो ही कुछ कर सकता है, सिर्फ ये नहीं यहाँ पे मतलब है कि मालिक है और उसके बाद उसने अपने इख्तियार किसी और को दे दिए कि जो मर्जी करो। नहीं, मालिक भी वही है, इख्तियार भी उसका ही चलता है। तो फिर हम अपनी मर्जियां ना चलाएं, फिर हम क्या करें, मालिक के हुक्म के मुताबिक चलें, मालिक नाराज ना हो जाए। लियज़ी अल्लज़ीना असाउ बिमा अमिलू, ताकि वो बदला दे उन लोगों को जिन्होंने बुरा किया साथ उसके जो उन्होंने किया, यानी बुरा ही बदला दे। अल्लाह ताला ने अपने हाथ में मिल्कियत रखी हुई है, अल्लाह ताला ने ये सारी कायनात बना के तुम्हें इसमें बसाया है। समझ जब आ गई ना कि मिल्कियत उसी की है, तो अब नतीजा क्या है कि उसकी बादशाहत में उसकी मर्जी चलेगी, उसका हुक्म चलेगा, जो उसके हुक्म के मुताबिक चलेगा उसके लिए वही वयजजी अल्लजीना अहसनु बिलहुस्ना, जिसने अच्छा किया आसन किया बहुत अच्छा किया उसके लिए हुस्ना है, बहुत उम्दा बदला, और जिसने बुरा किया बगावत की उसके हुक्म को तोड़ा उसको चैलेंज किया उसके मुकाबले में खुद खड़ा हो गया, उसके लिए वही है जो उसने अमल किया, यानी बुरा ही बदला है। समझ आई? आप किसी बादशाह की मुमलिकत के अंदर रहते हुए उसको चैलेंज नहीं कर सकते। इस दुनिया के बादशाह तो बहुत बेचारे कमजोर हैं, उनका तो अपने जिस्म पे भी बस नहीं है, फिर भी हम डरते हैं उनसे, डरते हैं यहाँ अगर हमने कानून तोड़ा तो फिर हमें सजा मिलेगी, अगर हमने कोई जुर्म किया तो हम पकड़े जाएंगे। हालांकि उनकी पकड़ क्या होगी, और शायद कोई छूट भी जाए, उनकी पकड़ में आ ही ना सके, शायद उसको पता ही ना चल सके बादशाह को, फिर भी हम डरते हैं। लेकिन देखो कितनी हमारी दीदा दलेरी है कि कायनात का मालिक बादशाह, उसकी बादशाहत में रहते हुए हमें डर नहीं लगता, हम बेबाकी से गुनाह करते रहे और सोचे कुछ नहीं होता तो क्या हुआ, जैसे कि उसको पता ही नहीं चलना, और यहां वो पकड़ नहीं सकता। कोई एक बात तो जरूर है, इसीलिए इतने दीदा दलेर होते, ना डर होके काम करते, इसलिए परवाह ही नहीं करते, कभी सोचा ही नहीं कि उसको भी खुश करना है या उसकी नाराजगी से बचना है, या उसकी सजाएं बड़ी सख्त हैं, और उसने पकड़ लिया तो मेरा क्या होगा, रोते नहीं, फिर भी अपने गुनाहों से खौफजदा नहीं होते। तो उसने अपनी बादशाहत में यही कानून रखा है कि उसकी मर्जी से चलो, और नहीं चलोगे तो फिर देखो तुम्हें तुम्हारे अमल का बदला मिल जाएगा। इंसान सोचता है बुराई करता हूं कुछ भी नहीं होता, शायद वो भूल गया है या उसको पता ना चला, ऐसा कुछ भी नहीं है, ना वो भूलता है और ना उसके इल्म से बाहर कोई चीज है, सब जानता है। बल्कि वो तो फरमाता है हदीसे कुदसी में है ना कि अल्लाह ताला फरमाता है कि मैं गिन गिन के तुम्हारे अमल रखता हूँ और उसके मुताबिक तुम्हें बदला मिलेगा, गिन गिन के रखे हैं। अहसाहुल्लाहु व नसूह, अल्लाह अकबर, 28वां बारे की सूरत मुजादला की आयत, कि उसने गिना हुआ है वो भूल गए हैं। सुभान अल्लाह, इंसान भूल सकता है, वो भूलता नहीं, उसने गिन के रखा। तो जब गिन गिन के बदले होंगे तो फिर क्या होगा? तो फरमाया जो बुरा करते हैं ना उसको वो ही मिलेगा, बीमा आमिलो, जो उसने किया। लेकिन वयजजी अल्लज़ीना अहसनू, और वो बदला देगा उन लोगों को जिन्होंने अच्छा किया, बीमा आमिलू नहीं कहा गया जो उन्होंने अमल किए, बल्कि बिलहुस्ना कहा गया। इसमें उसका करम है, इसमें उसका फजल है, इसमें उसकी तरफ से कितनी बड़ी खुशखबरी मिलती है अच्छा करने वाले को, कि सिर्फ उतना नहीं मिलेगा बल्कि बहुत बढ़ा चढ़ा के वो देने वाला है कि एक नेकी का ख्याल भी कर लोगे, इरादा भी कर लोगे, कर नहीं पाए। इरादे पे ही नेकी मिल जानी है एक, और कर लिया तो 10 गुना, और 10 गुना से भी ज्यादा कर सकता है 700 गुना, और कहीं आता है बेहिसाब भी तुम्हारी नीयत के मुताबिक, इखलास के मुताबिक। लेकिन बुराई का नहीं ये फरमाया कि जो तू बुराई करेगा, हालांकि कायनात का मालिक है वो, उसके तो एक हुक्म को भी हमें तोड़ना नहीं चाहिए था। कितना अजीम है और हम कितने छोटे हैं, इतने मामूली हैं। इंसान के सामने कीड़ा होता है ना, छोटा सा कीड़ा जो माइक्रोस्कोपिक है, उससे सिर्फ नजर आता है, जूं का अंडा देख ले, फिर भी कुछ रेलेवेंस हो सकती है कि इंसान है और एक जूं का अंडा है, बहुत छोटी चीज। अल्लाह ताला और बंदे के अंदर तो कोई मुकाबला है ही नहीं। कहाँ वो कायनात का मालिक और कहाँ इंसान, एक जर्रे के बराबर भी हैसियत नहीं है उसकी अल्लाह ताला के मुकाबले में। उसको तो कोई एक भी नाफरमानी नहीं करनी चाहिए थी, और करता तो अल्लाह ताला चाहे तो उसको उल्टा लटका देता, उसकी जिंदगी खत्म कर देता, उसको मिटा देता इस जमीन से। लेकिन फिर भी वो कहता है जितना तुमने बुरा किया उसके मुताबिक तुम्हें इसका बदला मिलेगा, और वो भी मोहलत देता रहता है, और फरिश्ते को भी हुक्म है बुराई लिखने वाले फरिश्ते को कि ठहर जाओ, जरा फौरन ना लिख लो, जरा सा वेट करो, हो सकता है ये तौबा कर ले। हालांकि वो मालिक है, वो सोचे कोई एक आध चीज का नहीं, जो आसमानों में जो जमीन में, हमारे दिल ना हैबत के साथ ना भर जाने चाहिए, उसकी अजमत के साथ भर जाने चाहिए कि वो जात कितनी बड़ी है। फिर भी फरमाया जो उसने बुरा किया उतना ही बस उसको बुराई मिलेगी, उससे ज्यादा नहीं, वरना एक के बदले में 10 मारे मिलनी चाहिए थी। एक गुना किया ना 10 गुना होता, क्योंकि तुम्हें नहीं पता तुमने किसकी नाफरमानी की। देखिए ना, आप एक बॉस को नाराज कर दें, उसके कॉन्सिक्वेंसेस अलग हैं, लेकिन एक वजीर आजम को नाराज कर दे और उसको बात को कोई उसके आगे कोई गुस्ताखी करे, उसके कॉन्सिक्वेंसेस डिफरेंट है। जितना कोई बड़ा आदमी होता है उसी के, यानी हुक्म तोड़ना या उसको नाराज करने पे उसके मुताबिक नतीजा निकलता है ना, सजा उसके मुताबिक ही होती है। रब्बे कायनात को कोई नाराज करे लेकिन सजा उतनी ही है जितना उसने अमल किया, उससे ज्यादा नहीं। और जो अच्छा बदला है उसकी तो इंतहा क्या है कि इंसान सोच ही नहीं सकता, सुभान अल्लाह, कि एक एक कदम जो अल्लाह के रास्ते में इंसान का उठता है ना, तो एक एक कदम को वो गिन के रखता है, एक एक कदम को, एक एक बात को, एक एक लफ्ज को। तकलीफ भी उसको जो पहुंचती है उस पर सबर करता है, उसके ऊपर भी अजर है। तो वो कितना बढ़ा के देता है, एक दफा दरूद पढ़ता है 10 गुना माफ हो जाते, 10 दर्जे बुलंद हो जाते, 10 नेकियां लिख ली जाती। एक एक ही होना था ना, एक दफा दरूद पढ़ता तो एक नेकी लिखी जाती, सिर्फ एक नेकी नहीं 10 नेकियां, और उसके अलावा भी 10 गुना माफ, 10 दर्जे बुलंद, सुभान अल्लाह। यानी कितना वो करीम रब है। अच्छा, फिर बुराई का इरादा कर लिया और उसके डर से बुराई नहीं की, छोड़ दी, तो नेकी लिख ली गई, सुभान अल्लाह। तो वो कैसा कर्म करने वाला है, वो कैसे हुस्ना देता है अच्छे को, उसकी अच्छाई से भी बढ़ के देता है, ये उसका फजल है। अल्लाह अकबर। इसीलिए जिसको वहां पे फिर भी बुरा अंजाम मिलेगा तो उसको कहा जाएगा कि तुम अपने आप को ही मलामत करो, किसी और को ना करो। इसलिए इतने अल्लाह ताला के फजलो करम के बावजूद तुम एंड अप अगर जहन्नुम में हो गए ना, तो फिर अपने आप को ही मलामत करो, अपने आप को ही बुरा कहो, कोई और नहीं है, तुम अपने खुद ही दुश्मन थे। अल्लदीना यजतनिबुना कबाइरल इथ्म। अच्छा, ये कौन लोग हैं जिनको हुस्ना मिलेगा? कौन लोग हैं, इनकी क्या सिफात है? एक हुस्ना का माना जन्नत भी है, उनको जन्नत मिलेगी, जो इंसान के किसी भी अमल का बदला नहीं हो सकती, क्योंकि इंसान के अमल चाहे वो सारी जिंदगी सज्दे में भी पड़ा रहे ना, वो जन्नत की कीमत अदा नहीं कर सकता। तो जो हुस्ना है, जन्नत है, ये किनको मिलनी है? अल्लदीन यजतनिबून कबाइरल इस्म, जो कबीरा गुनाहों से बचते रहते थे। वल फवाहिश, और फवाहिश से, फवाहिश के अंदर ना बेहयाई के जितने भी काम है, बेशर्मी के काम, उस सब फवाहिश में आते। इल्ला लमा, यहां पे ये नहीं कहा गया सुभान अल्लाह रब कितना करीम है, कि ऐसा होना चाहिए जन्नत में जाने के लिए कोई सिनलेस हो, कि उसने कभी गुनाह किया ही ना हो, कभी कोई गलती उसे हुई ही ना हो। अल्लाह ताला को मालूम है ये इंसान कमजोर है, कभी फिसलेगा भी, कभी जज्बात में आ जाएगा, इससे गलतियां हो जानी है। तो उसने ये नहीं कहा वो इंसान जो कभी किसी गुनाह में मुलव्वस हुआ ही ना हो, वो सिर्फ जन्नत में जाएंगे, फिर तो कोई भी नहीं जा सकता था। वह कुल्लू बनी आदम जो है ना, वो खताऊन है, खताकार। तो फरमाया इल्ला लमम, सिवाय लमम के। अब लमम क्या है, इसकी बहुत सारी तफासीर में बातें मुफस्सरीन ने लिखी हैं कि लमम क्या चीज है, लमम से मुराद कौन से वाले गुनाह हैं। तो पहली तो बात ये कि लमम से मुराद लिया गया है सगीरा गुना, वो और वो गुना जिन पे दुनिया में कोई हद नहीं है, ना आखरत में अजाब की वईद है। ठीक है, तो इसी वजह से छोटे गुना कहा गया ना। और लमम का माना ये भी लिया गया है कि कोई गुनाह इंसान कर ले, फिर उसके बाद दोबारा कभी ना करे, अल्लाह से डर जाए और दोबारा कभी ना करे, कि भाई ये एक दफा मेरे से हो गया, ये ना हो कि मैं दोबारा इस गुनाह में चला जाऊं, अल्लाह ताला मुझे इस पे पकड़ ले, इसलिए वो डर जाता है। फिर लमम का ये भी माना है कि तौबा कर ले इंसान जिस गुनाह के ऊपर। तो यानी इनके ऊपर इंसान को कहा गया कि फिर कोई बात नहीं, ये तो हो ही जाता है, इन गुनाहों के ऊपर नहीं पकड़ोगी, क्योंकि ये गुनाह लमम में वो भी आते हैं जो कि इंसान की आदत ना बन जाए। एक होता है ना, चाहे सगीरा गुनाह है लेकिन आदत बन गया, वो नहीं लमम में आते, वो सगीरा गुनाह भी कबीरा बन जाते। तो लमम से मुराद वो है जो इंसान की आदत ना बने। मैंने जैसे आपसे कहा वो गुनाह करता है तो उसके बाद तौबा कर लेता है, ये भी लमम होता है कि इंसान गुनाह के करीब चला जाए लेकिन वो करे ना, उसको फिर डर जाए। तो लमम को देखना इसलिए जरूरी है कि हमें पता होना चाहिए कि कौन से गुनाह लमम में आते हैं, जिनका अल्लाह ताला ने फरमाया कि ये गुनाह जो है ना, ठीक है ये उससे हो जाते हैं लेकिन ये साथ साथ माफ भी हो रहे हैं। किस तरह इंसान जब पांचों नमाजें पढ़ता है तो हर नमाज के बाद जब दूसरी के लिए खड़ा होता है तो ये वाले लमम जो है वो अल्लाह ताला माफ कर देता है। वुजू करता है, वुजू के कतरों के साथ गुनाह माफ हो जाते हैं, चेहरे के, हाथों के, पैरों के। इसी तरह इंसान जब मस्जिद की तरफ जा रहा है तो उसके कदमों के ऊपर, हर कदम के ऊपर उसके गुनाह माफ होते हैं। इसी तरह मैंने आपको कहा दुरूद शरीफ पढ़ता है तो उसके गुनाह माफ होते हैं। और एक जुमे से दूसरे जुमे के दरमियान, जब एक जुमा पड़ता है फिर दूसरा जुमा, तो रमजान से दूसरे रमजान के दरमियान, एक उम्रे से दूसरे उम्रे के दरमियान के गुनाह माफ हो जाते हैं। तो ये जो गुनाह है ना लमम के, ये इस तरह से इंसान के झड़ते जाते हैं, धुलते जाते हैं। इसका मतलब कबीरा गुनाह इससे नहीं धुलते, कबीरा के लिए तौबा करनी जरूरी है। और लमम जो है उनमें जाहिलियत में किए गए गुनाह भी हैं जिन पे इंसान फिर तौबा बाद में कर लेता है। तो समझ आ गई आपको लमम की कि क्या है, यानी सगीरा गुनाह जिन पे हद नहीं है, जिसको कर लिया तो उसके बाद दोबारा ना इंसान करे, एक दफा हो गया अब डर गया, जिनके ऊपर इसरार ना करे या तकरार ना करे, यानी उनको कंटिन्यू ना रखे, आदत ना बना ले उनको, ठीक है। तो ये सब लमम है। तो ये फिर इंसान की इन आमाल के जरिए, जो मैंने आपको नेकियां बताई हैं, इनके जरिए ये गुनाह माफ होते जाते हैं। जैसे हम नमाज के बाद ये जो 33 दफा सुबहान अल्लाह, 33 दफा हम्दुलिल्लाह, 33 दफा अल्लाह अकबर, और एक दफा ला इलाहा इल्लल्लाह वहदहु ला शरीक लहु, ये पढ़ते हैं 100 हो गया, तो इतने गुनाह माफ हो जाते हैं, समुंदर की झाग के बराबर भी हो। तो ये कौन से गुनाह, ये लमम है, ठीक है। तो ये अल्लाह ताला ने तरीके रखे इनको माफ कराने के, इंसान के साथ साथ ये धुलाई होती जा रही है। लेकिन जो कबाइर है ना, उनसे अगर इंसान बचता है, तब कबीरा गुनाह नहीं कर रहा। और कबीरा गुनाह कौन से हैं, क्यों, इसका मतलब है कबीरा गुनाह से तो डेफिनेटली इंसान को बचना है, कबीरा गुनाह इंसान को नहीं करने। कबीरा गुनाहों के बारे में इमाम ज़हबी की किताब है अल कबायर, अल कबायर, तो उसमें इंसान जो है पढ़ सकता है, देख सकता है कबीरा गुनाह, क्योंकि कबीरा से हमें हत्ता इम्कान बचने की कोशिश करनी है। बाज लोग कबीरा सिर्फ 7 मुहलिकात को समझते हैं, जो 7 मुहलिक आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने गुनाह बताए ना, अल्लाह ताला के साथ शिर्क करना, जादू, कत्ल करना, सूद खाना, यतीम का माल खाना, मैदान जंग से पीठ फेर के भागना, पाक दामन औरतों पे तोहमत लगाना, ये 7 गुनाह हैं जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बताए, ये 7 कबीरा हैं। हालांकि ये सिर्फ नहीं है, इसके अलावा भी बहुत सारे कबीरा गुनाह हैं। इब्ने अब्बास ने 70 तक फरमाया कि कबीरा गुनाह है, 70। और कबीरा गुनाह इमाम इब्ने तैमिया ने ये फरमाया कि हर उस गुनाह को कहते हैं जिसका करने वाले के लिए दुनिया में भी कोई सजा मुकर्रर की गई हो, या फिर आखरत में कोई वईद सुनाई गई हो कि आखरत में इसके लिए ये, या उसको आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया ये मलऊन है, लानत जदा है। और इसमें सबसे बड़ा गुनाह तो शिर्क है। अब हम इसकी पूरी लिस्ट के अंदर नहीं मतलब डिटेल में जा सकते, पूरी लिस्ट की डिटेल में, लेकिन स्टिल मैं, ताकि आपको एक ओवरव्यू मिल जाए कि कौन से कबीरा गुनाह हैं, और वो लोग कबीरा गुनाहों से इज्तनाब करते हैं, तो वो कबीरा गुनाह कौन से हैं, शिर्क, और जितनी शिर्क की किस्में हैं, चाहे वो रियाकारी है, सगीरा को शिर्क है, कबीरा शिर्क है, सारे, ठीक है। कत्ल करना, जादू करना, नमाज ना पढ़ना कबीरा गुनाह है, यानी नमाजों को स्किप करना, नमाजें छोड़ देना, जकात ना देना, बगैर किसी उजर के रमजान के रोजे ना रखना, इस्तात है लेकिन हज पे ना जाना, बस ऐसे ही, क्योंकि बस हम बिजी बहुत है, चले जाएंगे चले जाएंगे, या वालदैन की नाफरमानी करना। इवन यहाँ तक आता है कि ये भी कबीरा गुनाह है कि किसी की वजह से, एक औलाद की वजह से वालदैन रो पड़े, उनको रुला दे औलाद, तो वो भी कबीरा गुनाह बन जाता है। रिश्तेदारों से कता ताल्लुक ही करना, जिनाकारी करना, इसी तरह होमोसेक्सुअलिटी और औरत की पीठ में मुबाशरत करना, सूद खाना, अल्लाह और उसके रसूल की तरफ झूठी बात मंसूब करना, यतीम का माल खाना, मैदाने जंग से फरार हो जाना, हुक्मरान का राया के साथ धोखा देना। शायद इससे तो कोई हुक्मरान ही बचा हो, क्योंकि अक्सर हुक्मरान तो राया के साथ धोखा ही देते हैं। उनको कितने कितने वादे करते हैं और उसके बाद कुछ नहीं होता। फखर, तकबुर और खुद पसंदी, ये भी कबीरा गुनाह है। मेरे ख्याल में जब ये सारे पढ़ें आप, तो इंसान सोचता है कितने सारे कबीरा गुनाह हम करते हैं, और फिर हम सोचते हैं हम तो बहुत नेक हैं। क्योंकि हमारी अक्सर ज्यादा तवज्जो इस पे होती है ना कि बस नेकियां कर लें, चलो नमाज पढ़ लो, तहज्जुद पढ़ लो, इतनी तस्बीह कर लो, इतना ये कर। कबीरा गुनाह से बचने को हम एक पॉइंट नहीं बनाते कि हमने गुनाहों से बचना है। क्योंकि ये नमाजें पढ़ना, ये करना, ये फिर भी आसान लगता है, लेकिन कबीरा गुनाहों को छोड़ देना, आप जैसे सूद खाना, हज उमरे कई लोग करते जाते हैं लेकिन सूद नहीं छोड़ते, हराम खाना नहीं छोड़ते, हराम कमाइयां नहीं छोड़ते। इसी तरह फखर और गरूर और ये नहीं छोड़ते, खुद पसंदी में मुब्तिला रहते हैं। मैं तो बहुत बड़ी चीजों आगे इसके बारे में बात आ रही। झूठी गवाही देना, शराब पीना, जुआ खेलना, अब कितना आम हो जाता है। नहीं, जो हम फॉर फन हम ये गैम्बलिंग करते हैं फॉर फन, हम तो उस पैसे को लेते भी नहीं, ये तो जस्ट गेम के तौर पे हम खेल रहे हैं। पाक दामन औरतों पे तुहमत लगाना, किसी के ऊपर भी बात लगा देते हैं कि ये ऐसी और ऐसी है। फिर चोरी करना, डाके डालना, झूठी कसम खाना, अब ये तो इंसान अपने आप को बचाने के लिए झूठी कसमें खा लेता है, अल्लाह की कसम, इसकी फलां की कसम, कुरान पे हाथ रख के झूठी कसमें खा रहे होते हैं। कोर्ट्स वगैरह में तो चलती हैं, खानदानों में भी होती हैं। जुल्म करना, भत्ता लेना, हराम खाना, खुदकुशी करना, इस्लाम के कवानीन के खिलाफ फैसला करना, रिश्वत लेके फैसले देना, औरतों मर्दों का बाहमी मुशाबहत इख्तियार करना, द यूस वो होता है बेगैरत को कहते हैं जिसको अपनी बीवी बेटी इनके ऊपर गैरत नहीं आती, कि वो जो मर्जी कर रही हैं उसको शर्म नहीं आती कि ये बेहयाई के कोई काम कर रही हैं, या मर्दों के साथ औरों के साथ बातचीत या इस तरह के ताल्लुकात रख रही हैं और वो इसके ऊपर ओके है। हलाला करना और करवाना, अच्छा आप 3 तलाकें हो गई, आप किस तरह मिले, चलो शादी करके वहां से और फिर उसके बाद दोबारा पहले शौहर से मिल जाए। पेशाब से तहारत हासिल ना करना, पेशाब के कतरों की फिर परवाह ही ना करना। दुनिया के लिए इल्मे दीन हासिल करना कि मैं यहां से सर्टिफिकेट ले लूं, उसके बाद यहां अप्लाई करूंगी, इतनी की नौकरी मुझे मिल जाएगी, इसके लिए। अच्छा तो फिर मैं ये इल्मे दीन हासिल करती हूँ, फिर फलान जगह पे लग जाती हूँ, यहाँ लोग सोचते हैं कि हमारे बच्चे को और नहीं कुछ आता, इसका दिमाग इतना चलता नहीं है, चलो इसको मौलवी बना देते, कम अज कम कभी भूल का नहीं मरेगा। खयानत करना, एहसान जिताना, अल्लाह हू अकबर, कितनी दफा ऐसा होता है कि इंसान ऐसी बातें बोल जाता है। याद है तुम्हें उस वक्त मैं तुम्हारे कितने काम आई थी, तुम्हारी नौकरी दिलाई थी, तुम्हें वीजा दिलवाया था, तुम्हें घर लेके दिया था, हमने तुम्हारी मदद की थी उस वक्त जिस वक्त आपको मदद चाहिए थी, आप बीमार थे तो मैं आके तीमारदारी तुम्हारी करती थी, याद नहीं है उस वक्त। ये एहसान जिताना होता है। तकदीर का इनकार करना, तजस्सुस करना, चुगलखोरी करना, लान तान करना, बता ना औरतें लानत ज्यादा करती हैं, उसलिए जहन्नुम में होंगी, तो बाज दफा तो अपने बच्चों पे ही करती हैं, लानत है इसके ऊपर, फलाने के ऊपर लानत, या किसी को भी लानते हर वक्त भेजते रहती, उसके ऊपर लानत, उसके ऊपर लानत, लानत तेरी शक्ल पे, इस तरह कितनी औरतें इस तरह की बातें करती। काहिनों के पास, नजूमियों के पास जाना और उसकी तस्दीक करना, हाँ जी फलाने के पास हिसाब निकलवाने जाते हैं, ये शादी ठीक है कि नहीं, ये सफर करें कि नहीं, कारोबार करें कि नहीं, और स्कोप्स पढ़ते रहते हैं। शौहर की नाफरमानी करना, वो पता ना शौहर की नाशुक्री की वजह से कई औरतें जहन्नुम में होंगी। नोहा करना, जब किसी की भी वफात हो जाए तो सीने को पीटते हैं और नोहा करते हैं, सार मारते हैं, चीखते हैं, चिल्लाते हैं, तस्वीरें बनाना, यानी ऐसी पेंटिंग्स जो जिंदा इंसानों की हो, ऐसी ड्राइंग्स, कमजोरों पे ज्यादती करना औरतों पे, कमजोरों पे, ये तो कमजोर है इनका कौन पूछने वाला है, पड़ोसी को तकलीफ देना, टखनों से ऊपर टखनों से नीचे मर्दों का कपड़ा लटकाना, सोने चांदी के बर्तन इस्तेमाल करना, मर्द हैं तो उनका रेशमी और इस तरह के लिबास पहनना, गुलाम का मालिक के पास से भाग जाना, गैरुल्ला के नाम पे ज़िबा करना, जानबूझ के अपने आप को बाप के अलावा किसी और की तरफ मंसूब करना। जिस तरह कई लोग होते हैं उनको ये होता है कि हमारी तो कोई ऐसी अच्छी जात नहीं है, तो हम ऐसा करते हैं अपने नाम के साथ कोई खान लगा लेता है, कोई मलिक लगा लेता है, हालांकि उनका उससे कोई ताल्लुक नहीं है, सिर्फ इसलिए कि अपने आप को जरा प्रेस्टिजियस, रिस्पेक्टफुल जाहिर करने के लिए कि हम तो इस तरफ के हैं, या अपने बाप के अलावा किसी और की तरफ मंसूब करना, नाप तोल में कमी बेशी करना, मुर्दार खाना, सुअर का गोश्त खाना, नमाज जुमा को छोड़ना, अल्लाह की रहमत से मायूस हो जाना, मुसलमान को काफिर कहना, धोखा देना, सहाबा को बुरा भला कहना, फोहश कलामी करना, फोहश कलामी आगे फाहिशा आ रहा है ना, बेहयाई की बातें, नसब में ऐब लगाना कि तू नाई, तू मोची, तू फलाना, उसके ऐब लगाना, ये कबीरा गुनाह है। वो कितने आराम से कह देते इनके अंदर शादी नहीं करनी, ये तो ये होते हैं, ये तो फलां होते हैं, यानी ये घटिया जात है। कोई बुरी चीज, कोई बुरी काम को ईजाद करना, जैसे पहली दफा कोई ऐसी चीज शुरू कर लेना जिस कभी नहीं थी, बाल में बाल मिलाना और जिस्म का गूंदना, यानी ये टैटूज वगैरह, और बालों में बाल मिला लेना, ऐसी विग्स लगा लेना, ऐसे जूड़े आर्टिफिशियल लगा लेना, ऐसी चुटिया, अपने बाल इतने हैं नहीं, आर्टिफिशियल लगा लेना, मुसलमान को लोहा दिखा के धमकी देना, यानी जैसे चाकू है, खंजर है, इसको दिखाना, उससे धमकी देना। बस औरतें बच्चों के आगे छुरियां लेके दिखाती हैं और कहती हैं कि अगर तुमने ये किया ना, इससे मैं ये कर दूंगी, तो ये भी फरिश्तों की लानत होती है ऐसे पे। और हरम के अंदर नाफरमानी के काम करना, इल्हाद करना, तो ये कबीरा गुनाह है, अल्लाह ताला माफ करे। ये इंसान को इनके बारे में जानना जरूरी है ताकि इंसान इनसे बच सके। और कबीरा गुनाह और फवाहिश, फवाहिश तो इतनी आम हो चुकी हैं कि आज फवाहिश को फवाहिश समझा ही नहीं जाता। बेहयाई के कितने काम हमारे इर्द गिर्द हो रहे हैं, चाहे वो देखने की ताल्लुक रखते हैं, सुनने से ताल्लुक रखते हैं, करने से ताल्लुक रखते हैं। बेहयाई की चीजें इर्द गिर्द फैली हुई हैं, पढ़ने से ताल्लुक रखते हैं। तो आखिर चीज तो जिना है, वो तो फवाहिश है ही, लेकिन उसके अलावा भी बेहयाई की जितनी बातें, इवन किसी के आगे हाथ फैलाना, इसको भी फवाहिश में गिना गया। तो फवाहिश से इंसान बचे और सोचते नहीं इसमें क्या बात है, तो फिर क्या हो गया। देखिए ना, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें बताया है कि आंखों का भी जिना होता है, कानों का भी जिना होता है, हाथों पैरों का भी जिना होता है। शर्मगाह तो सिर्फ उसकी तस्दीक करती है उसके बाद कि हाँ, ये सारी चीजें इससे पहले हुई हैं, वरना ये सब गुनाह होते हैं, उसके बाद एंड में शर्मगाह तक आता है। और ये कौमे लूत वाला अमल जो है, ये भी फहाशी है, जिसको आज कितना आराम से हजम कर लिया गया। LGBT सारा फहाशी है। तो ये बेहयाई की बातें हैं, इनको बड़ा मजे ले लेके देखना या सुनना, यहाँ प्रोनोग्राफी इसके अंदर सारी आ जाती है, जो कि ये सब चीजें फवाहिश में है। ये लोग कबीरा गुनाहों से, और कबीरा फवाहिश कबीरा गुनाहों का ही हिस्सा है, लेकिन उसको अलग से मेंशन करना क्यों जरूरी है? इसलिए अलग से इसके ऊपर ताकीद की गई है कि इससे खास तौर पे बचते हैं। हाँ, मगर लम्हा उनसे हो जाते हैं जो ऐसे मैंने जिन गुनाहों की लिस्ट आपको बता दी है। अब ये मतलब नहीं कि लम्हा पे भी इंसान इसरार करना शुरू कर दे सगीरा गुनाह पे। सगीरा गुनाह कौन से होते हैं जिनके ऊपर मना किया गया लेकिन ऐसी कोई सजाएं इस तरह की नहीं बताई गई, बस मना किया गया ये ना करो। तो ये मतलब नहीं है कि इंसान सगीरा गुनाह करता जाए, इसलिए कि ये तो देखें कि किस रब की नाफरमानी, और रब कितना अजीम है, उसकी तो छोटी नाफरमानी भी नहीं करनी चाहिए। और शैतान ने, इब्लीस ने एक ही नाफरमानी की थी। हम तो ये सोच के बड़े आराम से हो जाते ना, मैं इतनी नेकियां भी तो करती हूं, अगर ये कर लिया तो क्या फर्क पड़ गया। नहीं, वो भी बड़ी चीज है, इसलिए क्योंकि अगर जानबूझ के इंसान कर रहा है और बेपरवाह हो रहा है, हमें क्या पता कौन सी चीज अल्लाह ताला को नापसंद आ जाए। हम पढ़ चुके हैं वो हदीस, कई दफा मेंशन हुई है कि इंसान मुंह से कोई ऐसा कलमा निकालता है जिसकी वो परवाह नहीं करता, लेकिन अल्लाह ताला के हाँ वो इतना कभी होता है, इतना बुरा होता है, अल्लाह ताला उसकी वजह से उसको ठिकाना जहन्नुम में बना देता है। तो ये समझना चाहिए कि लम्हा पे भी इसरार नहीं करना, इसलिए कि जैसे छोटी छोटी लकड़ियां ला के इंसान जमा करे तो कितनी बड़ा ढेर बन जाता है, इसी तरह बहुत सारे छोटे गुनाह अगर हों तो वो भी कबीरा बन जाते हैं। और बेहतरीन खताकार कौन है, पता है तो सबसे होंगी, पूरे इब्ने आदम, तमाम इब्ने आदम जो है ना खताकार है, लेकिन बेहतरीन खताकार वो है जो तौबा कर लेता है। कभी इंसान से हो जाता है लेकिन इंसान उसके बाद इस पे रोए कि मुझसे हो गया ये गुनाह, अल्लाह ताला तू इस पे माफ कर, और उसके ऊपर जस्टिफिकेशन ना दे और जुर्रत करके फिर बार बार ना करे, पलट आए अल्लाह ताला की तरफ और उस गुनाह को छोड़ दे। और फिर अगर हो जाए तो फिर तौबा कर ले, तो कभी इससे पीछे ना हटे कि अब नहीं मैंने तौबा करनी, या बुढ़ापे में तौबा कर लूंगा, या जब हज पे जाऊंगी तो एक ही दफा तौबा करूंगी, अभी चलते रहें ये गुनाह। तो अल्लाह ताला की हर नाफरमानी जो है, अल्लाह ताला की बात, उसके हुक्म को तोड़ना, ये बड़ा जुर्म है। हाँ, कई कदम फिसल जाए इंसान का, कई जज्बात में आके उसके मुंह से कोई बात निकल गई, कोई काम हो गया, तो फौरन पलटे, फौरन अल्लाह ताला के सामने इस्तिग़फ़ार करे, अल्लाह ताला इन्ना रब्बका वासिउल मग़फ़िरा, बहुत वसी मग़फ़रत करने वाला है, बहुत वुसअत है उसकी मग़फ़रत में, यानी माफ़ करता है, बहुत ज़्यादा माफ़ करने वाला है। और जितना इंसान की तौबा में इखलास होगा, जितना इंसान दिल से तौबा कर रहा होगा, ये नहीं कि सिर्फ तस्बीह अस्तगफिरुल्लाह की तस्बीह एक सुबह को कर ली, एक शाम को कर ली, चलो हो गया काम मेरा बन गया, नहीं, जितने इंसान के अंदर वाकई शर्मिंदगी होगी, जितना वाकई इंसान महसूस करेगा कि ये गलती मैंने की है और ये बड़ी गलती है, ये नहीं होनी चाहिए थी, ये मैं क्या कर बैठा। ऐसे नहीं कि हाँ ठीक है और लोग भी तो इतना करते ही हैं, मुझसे हो गई तो कौन सी इतनी बड़ी बात है, चलो मैं तौबा कर लेती हूँ, बार दफा इंसान सॉरी इस तरह से भी तो करता है ना, हाँ ठीक है मैं सॉरी कर लेती हूँ, मैं तौबा कर लेती हूँ, लेकिन खैर इतना बड़ा नहीं मैंने वैसे कुछ किया, लेकिन चलो कर लेती हूँ, हाँ बस हो गया ना मुझसे, बस ठीक है ना, इतनी भी क्या बात हो गई, चलो तौबा कर लेती हूँ, लेकिन बस, यानी उसको इतना बड़ा नहीं करता हम, तो ये कैसी तौबा है फिर। देखिए तो सही कि किस रब की नाफरमानी की है। और जूं ही पता चले कि भी ये गलत था, उसी वक्त पलटे, उसमें इंतजार ना करे, जल्दी करे अल्लाह ताला की तरफ पलटने में, जल्दी करे तौबा करने में। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो शख्स इस हाल में आए कि अल्लाह की इबादत करता हो और उसके साथ किसी को शरीक ना करे, नमाज कायम करता हो, ज़कात अदा करता हो, रमज़ान के रोज़े रखता हो और कबीरा गुनाहों से बचता हो तो उसके लिए जन्नत है। तो ये बचना ज़रूरी है। और पहले नहीं पता था ये कबीरा गुनाह है, आज पता चल गया तो अब तौबा कर ले। इसी तरह आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब भी कोई बंदा खलूस दिल से ला इलाहा इल्लल्लाह कहता हो और कबायर से बचता रहे तो उसके लिए आसमान के दरवाजे खोल दिए जाते, और ये कलमा ला इलाहा इल्लल्लाह अर्श तक पहुंच जाता है। फिर इसी तरह हमें पता चलता है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो कबीरा गुनाह बताए हैं उनके अलावा भी ये गुनाह हैं ऐसे जो आपके सामने मेंशन किए गए, इन में से भी कोई गुनाह हो तो उसको कबीरा समझा जाए। अल्लाह ताला बड़ी मगफरत करने वाला है, फिर अल्लाह ताला माफ कर देगा जब इंसान अल्लाह ताला के आगे झुकता है। फिर कयामत के दिन अल्लाह ताला बंदे को बुलाएगा और उसके ऊपर अपना पर्दा डाल देगा और उससे उसके गुनाहों का इकरार कराएगा, गुनाहों के पूछ के बारे में पूछेगा, बंदे तूने ये गुनाह किए, तू इनको पहचानता है? इंसान कहेगा हाँ या अल्लाह मेरे से ये गुनाह हो गए। तो अल्लाह ताला फरमाएगा मैंने दुनिया में भी तुझ पे रहम करा और इनको छुपा के रखा, अब मैं यहाँ पे भी तुझ पे रहम करता हूँ, मैं इनको माफ कर देता हूँ। तो अल्लाह ताला किसी के सामने उसको एक्सपोज नहीं करेगा। मगफिरत का मतलब यही है, ढांप देना। अल्लाह ताला ढांप देगा उसके गुनाहों को, ये उसकी मगफिरत है। तो इंसान बख्शिश तलब तो करे और सच्चे दिल से करे। हुआ आलमु बिकुम इद अंशाकुम मिनल अर्द, वो तो तुम्हें जानता है, बहुत अच्छी तरह जानता है, बहुत ज्यादा जानता है तुमको, जब उसने पैदा किया तुमको जमीन से, यानी अभी तुम जमीन में थे ना, जब अभी जमीन में थे यानी कुछ भी नहीं थे, बेसिकली जमीन के अंदर ही गुम थे ना, तुम्हारे जर्रे कहीं तो जमीन में थे, फिर वो ही तो उसी से कोई पौधे उगे, उनको किसी जानवर ने खाया, वो जानवर का गोश्त किसी के वालदैन ने कंज्यूम किया, या उससे जो सब्जियां उगी वो किसी वालदैन ने खाई, और फिर जो उससे नुतफा पैदा हुआ उससे आगे इंसान पैदा हुआ। वो तो उस वक्त भी जानता था जब तुम जमीन के अंदर थे, लेकिन क्या क्या था इंसान उस वक्त, वो खुद सोचे 1000 साल पहले का सोच लें ना, हम कहीं थे तो ना हमारे माँ बाप, ना हमारे दादा परदादा कोई भी नहीं थे, क्या थे किसी को भी नहीं पता था कि किसी ने आना ऐसे सिवाय अल्लाह के। अल्लाह ताला उस वक्त भी जानता था, यानी जब माँ के पेट में भी नहीं अभी पहुंचे, उससे भी पहले, और उसके बाद का स्टेज वह इद अंतुम अजिन्नतुम फी बुतूनी उम्महातिकुम, उसके बाद उस स्टेज में है ना, पहले तो जमीन में ही रुले पड़े थे, फिर जब माँ के पेट में जनीन की सूरत में थे उस वक्त भी वो तुम्हें जानता था, यानी उसका और तुम्हारा ताल्लुक तो बहुत पुराना है, तुम्हें याद हो कि ना याद हो, कभी हम भी तुम भी थे आशना, तुम्हें याद हो कि ना याद, तुम्हें तो शायद याद भी नहीं, अल्लाह ताला तुम्हें उस वक्त भी जानता था, उसको एक एक तुम्हारे जर्रे का पता था। अला तो सकू अनफू सकू, तो अब बहुत अपनी बड़ाइयां ना बयान किया करो, अपनी आपको पाक ना ठहराया करो, कोई नेकी करके उसके बाद उछलते ना फिरो, अपनी असलियत को तो पहचानो, तुम क्या थे, किस हाल में थे, माँ के पेट में क्या थे, गोश्त की एक बोटी, क्या चीज थे, कोई पहचान नहीं, कोई नाम नहीं, कोई वजूद नहीं, इंसान था ही नहीं, एक बोटी का गोश्त आप धोते हैं ना, तो कभी गोश्त की बोटी को हाथ उठा में लेके दे सोचा करें ये मैं थी, क्या थी और मेरे रब ने मुझे क्या बना दिया, ताकि दिल में अल्लाह ताला की अजमत का एहसास पैदा हो, या अल्लाह तूने ही बनाया है, वरना कौन एक गोश्त की बोटी है उसे कौन सोच सकता है कि एक अच्छा जीता जागता चलता फिरता सोचने वाला इंसान एक बन जाएगा, कौन सोच सकता है, अल्लाह ताला तूने मुझे इससे ऐसा बना दिया। तो तुम तो माँ के पेट में थे तब भी जानता था, माँ खुद भी नहीं जानती होती कि मैं हामिला हूं, और अल्लाह ताला उस वक्त भी जानता है, फिर उसके बाद बच्चा बढ़ रहा है, माँ को नहीं पता कि
क्या बन रहा है अंदर, कैसे उसके अंदर चेंजेस आ रही हैं, कैसे उसका खून बन रहा है, हड्डियां बन रही हैं, रगें बन रही हैं, उसका मैदा बन रहा है, आंखें बन रही हैं, बाल बन रहे हैं। माँ को क्या पता, वो चल रही है फिर रही है, उस रब की नजर है, वो जानता ही नहीं, सिर्फ निगहदाश करता है। उस वक्त से तुम्हें, तुम्हारी नोक पलक संवार रहा है, तुम्हें एक वजूद दे रहा है। और उसकी फिनिशिंग कितनी खूबसूरत है, जब बच्चा पैदा होता है कितना प्यारा होता है, कैसी फिनिशिंग की हुई, ऐसा नहीं कि आधा उल्टा सीधा बस कच्चा पक्का ही निकला है, नहीं, पूरा वजूद, एक 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 पलक देखें, उसके अंदर भी बाल हैं, छोटे छोटे बारीक, छोटे छोटे नथने, छोटे छोटे कान, उंगलियां, उनके ऊपर नाखून, एक एक चीज ऐसे संवार के किसी ने बनाया। तो तुम अपनी पाकीज़गियां क्यों बयान करते फिरते हो, अपनी तारीफें, अपनी मैं, तुम क्या थे, ये थे तुम, कुछ भी नहीं थे, मिट्टी में रुला हुआ एक इंसान क्या कह सकता है, वो क्या था, अपनी ओरिजिन को तो याद करो, फिर उसके बाद आप जरा सा कुछ कर लेते तो इतनी अपनी बड़ाइयां, इतनी खुद पसंदी, अभी हमने बात की है ना, खुद पसंदी भी अजब, जो जिसको कहते हैं ये भी कबीरा गुनाह इंसान, क्योंकि जब उसमें खुद पसंदी आती है ना, तो अब वो फ्लॉन्ट करता है, फिर वो अब बैठ थोड़ी सकता है, अब अंदर आ गया ना कि मैं बड़ी चीज हूं, तो अब जरूर जुबान से बयान करेगा, जी मैंने तो इतने रोजे रख लिए, मैं तो तहज्जुदें पढ़ती हूँ, हाय आज तो कमर दुख रही है क्योंकि इतनी देर रात को मैं खड़ी रही बस ना, हाँ बस रोजे बस मैं बहुत रखती हूँ, हाँ मैं तस्वीरें इतनी कर लेती हूँ, मैंने तो इतने हज कर लिए, मैंने तो इतनी उम्रे कर लिए, मैं कुरान इतना पढ़ लेती हूँ रोजाना, इतनी मेरे पास सर्टिफिकेट हो गए, मैंने यहां से भी लिया यहां से भी लिया, तो आलमा की डिग्री मैं रखती हूँ। अपने कमालात मत गिनवाओ, तुम खुद सोचो तुम क्या थे। तो इस तरह की रिहाकारी करना या फिर अब बढ़ बढ़ के अपनी तारीफें बयान करना, ये इससे रोका गया है, मत करो ये। इसी तरह बाज लोग जब उनको कोई बता दे ना कि आप ये गलत कर रहे हैं, तो इसको इतना अना का मसला बना लेते हैं और जस्टिफिकेशंस देने लगते हैं, इतने डिफेंसिव मोड पे चले जाते हैं कि हम, हमें किस तरह किसी ने कह दिया, क्योंकि हम तो इतनी बड़ी चीज है। तो वो भी इस चीज का साइन है कि इंसान अपने आप को बहुत कुछ समझता है, क्योंकि मैं कैसे मानू कि मैंने गलती कर ली कोई, मैं तो पता नहीं कितनी परफेक्ट हूं, मुझे क्या कैसे दिया किसी ने, तो ये कोई अच्छी बात नहीं है, लड़ने खड़े हो जाते हैं, क्योंकि वो अपने आप को पाकीजा समझते हैं ना, अभव समझते हैं कि कोई गलती से पाक है ये, बस गलती तो हो ही नहीं सकती हमसे। इस तरह के नाम भी रखने के, जिनसे अपनी पाकीजगी जाहिर करें, इनसे भी मना किया गया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने एक बच्ची का नाम बताया गया कि इसका नाम बर्रा है, यानी नेक, तो आपने फरमाया नहीं, इसका नाम बदल दो, अपने आप को नेक और साले मत कहलवाओ, यानी सालेहा नाम रख देना, लड़के का नाम सालेह रख देना, नेक है, ये अच्छी बात नहीं है, इसे मना किया गया। तो ऐसे नाम जिनसे अपनी नेक की परहेजगारी बताई जाए, मैं बहुत नेक परहेजगार हूं, अब ये ना हो किसी का नाम हो और फिर वो कहें जी अब हम क्या करें, ठीक है अब हो गया, ये सोचें कि ये इस सूरत में रखा गया कि इंसान के अंदर ये खूबी आ जाए। अब देखें एक जमाना था शायद हर लड़की का नाम साइमा रख लेते थे, साइमा मतलब बहुत रोजे रखने वाली, तो चाहे उसने जिंदगी में कोई रोजा ही ना रखा हो, लेकिन ये भी एक नेकी का दिखावा है ना। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस बच्ची का नाम चेंज करके फरमाया इसका नाम जैनब रख दो, बर्रा ना रखो और नेक, इस तरह साजदा बहुत सजदे करने वाली, आबिदा बहुत इबादत गुजार, सालिहा बहुत नेक, ये सारे नाम इंसान अपनी नेकी बयान करने के लिए जो रखे वो दुरुस्त नहीं है। तो फरमाया कि अपनी नेकी परहेजगारी ना बयान करो, वला तुज़क्कू अन्फुसकुम,
और इससे पहले भी हम पढ़ चुके हैं कि अपनी नेकी परहेजगारी ना बयान करो, अलम तरह इल्लदीन यज़क्कून अन्फुसहुम, तुमने ऐसे लोगों को देखा जो अपने नफ्स की पाकीजगी बयान करते रहते हैं। अल्लाह ताला को पता है, वह आलम बिमन इत्तका, अल्लाह ताला को अच्छी तरह पता है, आलम को तो बहुत ज्यादा मतलब बड़ी अच्छी तरह पता है कौन है तुम में से बड़ा नेक है, बड़ा परहेजगार, तकवा वाला, क्या हो तुम, कितने पानी में हो, बताने की जरूरत नहीं है, वो जानता है। तो जिसको जानने की जरूरत है उसको तो पता है, फिर आपको और किसको बताना है, कोई जरूरत नहीं किसी को बताने की। इब्ने मसूद इवन अपने शागिर्दों से कहा करते थे, वो चाहिए ये हमारे लिए भी है, वो अपने शागिर्दों से जानते ही क्या कहते थे, अपने स्टूडेंट से कहते थे अपनी नियतों का जायजा लो, देखो अपनी नियतों को, अगर तुम इसलिए इल्म हासिल कर रहे हो कि ला इल्म को शर्मिंदा करो, कि जो जाहिल है उनको शर्मिंदा किया जाए कि मुझे बड़ा आता है और तुम्हें क्या आता है जी, तुम क्या चीज हो, अब बड़ी अपनी शेखियां मारना ताकि वो शर्मिंदा हो, अपनी डिग्रियों का बहुत शो ऑफ करना और लोगों से बहसें करना मकसद हो तुम्हारा, कि अब जहां बैठे बस बहस शुरू करते हैं क्योंकि हमें नॉलेज बहुत है, या लोगों की तवज्जो अपनी तरफ करना ये मकसद हो, ये लोग सारे जब किसी भी मजलिस में हो तो लोग कहें ये बहुत बड़े स्कॉलर हैं, ये बहुत इल्म वाली है, इसके पास ये सर्टिफिकेट, ये तो आलिमा है, ये तो फलां है, इसको तो बड़ा आता है, लोग मेरी तरफ अटेंशन सीकर्स होते हैं ना, अब उन्होंने अटेंशन किसी तरह तो लेनी है, चलो इस तरह ही लेने, लोगों पे मुमताज होके बैठना, लोगों को बताना कि भाई मेरे पास ये है, ताकि इनको पता तो चले भाई ये क्या समझ रहे हैं कि मेरे पास कोई डिग्री नहीं है, तो अब मैं खुद बताऊंगी तो पता चलेगा। आप देखें यूसुफ अलैहिस्सलाम कैद खाने में थे, उन्होंने ये नहीं कहा कि मैं तो ये हूं मैं तो वो हूं, कैदियों ने खुद ही पहचान लिया कि ये मोहसिन है, तो हमने अमल से तो अपना दिखाना हमारा पता चलता नहीं है, तो फिर हमें इसलिए बोल बोल के बताना पड़ता है, और बोल बोल के बताता वो ही है जिसके अमल में कुछ ना हो, वो खाली बर्तन ही बहुत ज्यादा आवाज देता है ना। तो फरमाया कि लोगों को की तवज्जो अपनी तरफ कराना मकसूद हो तो इल्म हासिल मत करो, मत हासिल करो ऐसा इल्म, कोई जरूरत नहीं है, फिर आराम से बैठो, अगर तुम्हारे मकसद ये तीन है तो ये बहुत गहरी बात है। हम सब भी सोचें कि हम क्यों ये इल्म ले रहे हैं, नंबरों के लिए कि नंबर दिखाएं, अब नंबर दिखा दिखा के शो ऑफ करना, बहुत सारे लोगों का सिर्फ मकसद कोई इल्म लेना नहीं है, उनकी बस जान किस में अटकी होती है, नंबर आ जाए, टेस्ट ऐसा हो कि बस नंबर हमारे पूरे पूरे आने चाहिए, नंबर ना आए तो बेहाल हो रहे हैं, तो ये नहीं सोचते कि हमने सीखा क्या है, मुझे कितना आ गया है, मेरे अमल में कितना आया, उस तरफ कोई तवज्जो नहीं, नंबरों पर सारी तवज्जो है, सर्टिफिकेट मिल जाए बस, डिग्री हासिल हो जाए बस, तो क्या कर रहे हैं हम, खुद सोचिए। और अच्छे भले लोग जिनसे मैं नहीं एक्सपेक्ट करती कि ये कुछ ऐसे होंगे, कितनी दफा पढ़ चुके हैं उसके बावजूद यही काम है, बस के भाई हम बस लोगों की तवज्जो ले लें, तवज्जो लेना ही है ना, नंबर मेरे आ जाए इतने, और फिर एक दूसरे को पूछते हैं तुम्हारे कितने नंबर आए, और जिसके ज्यादा हो वो तो फिर फूले नहीं समाता, जिसके कम हो वो बेचारा नहीं पूछता, जो दूसरे जिसके ज्यादा हो, क्योंकि अब ये भी पूछेगा तो फिर मैं बताऊंगी कि मेरे तो इतने आए हैं, तो क्यों हमारा ये तवज्जो इतनी ज्यादा नंबरों पे रहती है, सर्टिफिकेट्स पे रहती है, या हम अपने अमल के नंबर भी कभी लगाते, मेरा अमल कितना ए ग्रेड का है, बी ग्रेड का है, डी ग्रेड का है, एफ का है, उसमें भी कोई फर्क है या नहीं, उसमें मैं आगे हूं कि नहीं, हर वक्त हमारी फिक्र या हमारे सर पे यही धुन सवार रहती है कि नंबर किसके ज्यादा किसके कम, अल्लाह ताला ने नंबरों के बेस के ऊपर जन्नत नहीं देनी, अमल की बेस पे देनी, और अगर हमारा अमल जीरो पे ही खड़ा हुआ आज तक, तो हम कितने भी नंबर ले लें उससे फायदा नहीं है, अल्लाह अकबर, तो उसको अच्छी तरह पता है जिनमें जो तुम में तकवा वाले हैं, किस हद तक तुम कितने पानी में हो,
किस हद तक तुम आगे बढ़े हो अपने अमल में, कितना तुम्हारे अंदर अल्लाह का खौफ है, अल्लाह से डर के तुम गुनाहों से बच रहे हो, यही तकवा होता है ना। तुम नेकियों में कितना भाग भाग के आगे हो रहे हो, तो ये बताने की जरूरतें नहीं है, मत बताओ, उसको पता है, मत इश्तेहार लगाओ। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर, आफराई का। अब ये तो पता नहीं, आखिरत में ही जाके हमें पता चलेगा कि किसके नंबर कितने लग गए, अल्लाह के यहाँ किसके क्या नंबर है, उसके यहाँ भी तो एक नंबर लग रहे हैं ना। हमें तो सिर्फ ये अपनी जो ईमेल में आ जाते हैं या हमारे पेपर्स पे लिखे होते हैं, सिर्फ वो नंबर पता चलते हैं, हमें नहीं पता हमारे अल्लाह ताला के यहाँ क्या नंबर है, किस रैंकिंग पे कौन खड़ा हुआ है। उसकी फिक्र सबसे ज्यादा होनी चाहिए कि मेरे अल्लाह, मेरा एक नंबर यहाँ पे क्यों कटा, मैं नेकी में पीछे क्यों हो गई, मेरे से ये गुनाह क्यों हो गया, ये भी तो नंबर कटने हैं ना। ये इट शोज कि नंबर कटा है ना, गुनाह का होना नंबर कटना है। हम 7 नेकियों करते हैं, लेकिन जब 7 गुनाह भी कर रहे हैं तो हम तो अपना बैलेंस इक्वल कर रहे हैं, हम खुश हो रहे हैं मेरी नेकियां बहुत ज्यादा हैं, लेकिन अगर गुनाह भी 7 हो रहे हैं तो बैलेंस नहीं हो रहा। उस मीजान को जहन में रखें, नंबर नहीं कट रहे क्या, कट रहे हैं, और जो लग भी रहे हैं उनके ऊपर भी एहसान जिता के, कहीं कोई नेकी का काम कर दिया तो उसके ऊपर अपने तस्किए बयान कर करके, अपनी तारीफें खुद कर करके, और तारीफ की चाहत के लोग अब मेरी तारीफें करें, उसमें भी दिखावे कर करके उस अमल को जाया कर दिया, उस पे नहीं दुख होता, उस पे नहीं कभी रोते, हाय इसका क्या होगा, कभी उस पे भी दुख किया।